जो लोग इसराइल के साथ खड़े हैं वे अदालत में भी इसराइल के साथ खड़े होंगे। परिचय। 2 मार्च 2025 से इसराइल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी लागू की है, जिसमें सभी मानवीय सहायता, जिसमें भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति शामिल हैं, को रोक दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी परिणाम हुए हैं, जिनमें व्यापक भूखमरी, मृत्यु और स्वास्थ्य प्रणालियों का पतन शामिल है। रिपोर्टों में बच्चों की कंकाल जैसी स्थिति का वर्णन किया गया है, जो नाजी एकाग्रता शिविरों से मुक्त हुए लोगों की याद दिलाते हैं, और अस्पताल आपूर्ति की कमी के कारण मरीजों का इलाज करने में असमर्थ हैं। इन कार्यों को, जिन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा नरसंहार के रूप में नामित किया गया है और हाल के नरसंहार विद्वानों के सर्वेक्षण द्वारा समर्थित है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून IHL, यहूदी कानून हलाखा और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ द्वारा आदेशित निवारक उपायों का उल्लंघन करते हैं। दक्षिण अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ ICJ में दायर नरसंहार का मामला, जो दिसंबर 2023 में शुरू हुआ, 1948 के नरसंहार संधि के तहत एक्टस रॉयस, भौतिक कार्य और मेंस्रिया, इरादा के सबूतों से मजबूत होता है। नरसंहार संधि और संरक्षण की जिम्मेदारी R2P ढांचे के तहत कानूनी और नैतिक दायित्व, जो अमेरिकी विदेशी सहायता अधिनियम द्वारा प्रबलित हैं, नरसंहार को रोकने की वैश्विक अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं, जो अपराधों का अपराध है। यह निबंध इन उल्लंघनों, ICJ आदेशों और दक्षिण अफ्रीका के मामले का समर्थन करने वाले सबूतों को विस्तार से बताता है। यह जोर देता है कि वे राजनीतिक नेता जो चल रहे नरसंहार के मजबूत सबूतों के बावजूद इसराइल का समर्थन करते रहते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानून के तहत नरसंहार और युद्ध अपराधों में सहायता और उकसाने के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, जो इस संकट के गहन नैतिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, जो 1949 की जेनेवा संधियों, अतिरिक्त प्रोटोकॉल और प्रथागत IHL द्वारा शासित है, सशस्त्र संघर्षों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करता है। इसराइल के गाजा में कार्य कई मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। 1. नागरिकों की सुरक्षा और भुखमरी का निषेध। 4. जेनेवा संधि अनुच्छेद 27 नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार को अनिवार्य करती है, जो अनावश्यक पीड़ा पैदा करने वाली कार्रवाइयों को प्रतिबंधित करती है। अतिरिक्त प्रोटोकॉल I का अनुच्छेद 54 और प्रथागत IHL ICRC नियम 53 स्पष्ट रूप से नागरिकों की भुखमरी को युद्ध की एक विधि के रूप में प्रतिबंधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का रोम संयम जानबूझकर भुखमरी को युद्ध अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है। अनुच्छेद 8(2)(25) डंडा इसराइल की घेराबंदी, जो मार्च 2025 से सभी भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति को रोक रही है, गाजा के 2.3 मिलियन नागरिकों को अंधाधुंध निशाना बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भुखमरी से मृत्यु और गंभीर कुपोषण हुआ है, जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल 2025 द्वारा रिपोर्ट किया गया है। यह नरसंहार का गठन करता है, जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और नरसंहार विद्वानों के सर्वेक्षण द्वारा पुष्टि की गई है, जो तर्क देते हैं कि जानबूझकर वंचित करना नरसंहार संधि के मानदंडों को पूरा करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2025 नरसंहार विद्वानों का सर्वेक्षण 2024। 2. मानवीय सहायता की सुविधा देने की बाध्यता। अतिरिक्त प्रोटोकॉल I का अनुच्छेद 70 और ICRC नियम 55 पार्टियों को नागरिकों के लिए तेजी से और बिना रुकावट के मानवीय सहायता की अनुमति देने की आवश्यकता रखते हैं। इसराइल का सहायता पर पूर्ण प्रतिबंध, जिसमें अमेरिका द्वारा वित्त पोषित काफिले शामिल हैं, इस दायित्व का उल्लंघन करता है, जिसने UNRWA ने 14 सप्ताह से अधिक समय तक गाजा में कोई सहायता न पहुंचने की सूचना दी है। UNRWA स्थिति रिपोर्ट नंबर 172/2024। 3. सामूहिक दंड। 4. जेनेवा संधि का अनुच्छेद 33 सामूहिक दंड को प्रतिबंधित करता है। घेराबंदी हमास की कार्रवाइयों के लिए गाजा की पूरी आबादी को दंडित करती है, जो युद्ध अपराध का गठन करता है, जैसा कि ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 द्वारा उजागर किया गया है। 4. अमेरिकी विदेशी सहायता अधिनियम धारा 620I। धारा 620I उन देशों को सैन्य सहायता प्रदान करने पर रोक लगाती है, जो अमेरिकी मानवीय सहायता को प्रतिबंधित करते हैं। इसराइल का अमेरिका द्वारा वित्त पोषित सहायता का नाकाबंदी, जैसा कि एक लीक स्टेट डिपार्टमेंट मेमो डॉन 2025 में दर्ज किया गया है, इस कानून का उल्लंघन करता है, जिसमें सेनेटर बर्नी सैंडर्स जैसे सांसदों ने सैन्य सहायता को निलंबित करने की मांग की है। सैंडर्स 2024। यह नरसंहार को रोकने की नैतिक और कानूनी अनिवार्यता को दर्शाता है, जो नरसंहार संधि के ऐसे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के आह्वान के साथ संरेखित है। यहूदी कानून हलाखा का उल्लंघन। यहूदी कानून या हलाखा, जो तोराह, तलमुद और रब्बी व्याख्याओं पर आधारित है, युद्ध में भी नैतिक आचरण पर जोर देता है। प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं। 1. पिकोआच नेफेश। पिकुआच नेफेश, जीवन बचाने का सिद्धांत, जो तलमुद योमा 85b में निहित है, लगभग सभी अन्य आज्ञाओं से ऊपर मानव जीवन को संरक्षित करने को प्राथमिकता देता है। घेराबंदी, जो भुखमरी और मृत्यु का कारण बनती है, इस सिद्धांत का सीधे उल्लंघन करती है, क्योंकि यह अनावश्यक रूप से नागरिकों के जीवन को खतरे में डालती है। जो युद्ध के नियम, दिन मिल चामा मैमिनट्स मिशने तुराह किंग्स और उनके युद्धों के नियम 6-7 में यह निर्धारित करते हैं कि घेराबंदी के दौरान एक पक्ष को खुला रखना होगा ताकि नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच मिल सके, जिससे पूर्ण नाकाबंदी निषिद्ध हो। इसराइल की पूर्ण घेराबंदी, जो सभी प्रवेश बिंदुओं को रोकती है, इस नियम का उल्लंघन करती है, जिससे गैर लड़ाकों, विशेष रूप से बच्चों, में व्यापक पीड़ा होती है, जैसा कि ओर्च 2025 द्वारा रिपोर्ट किया गया है। यहूदी मूल्यों के साथ पहचान रखने वाले राज्य के रूप में इसराइल की कार्रवाइयां हलाखा के नैतिक आदेशों, विशेष रूप से पिकुआच नेफेश का उल्लंघन करती हैं, जो जीवन संरक्षण को प्राथमिकता देने की मांग करता है। आईसीजे के निवारक उपायों का उल्लंघन। आईसीजे ने दक्षिण अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ नरसंहार मामले में 2024 में नरसंहार को रोकने और मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी अस्थायी उपाय जारी किए। 26 जनवरी 2024 इसराइल को नरसंहार संधि के अनुच्छेद 2 के तहत कृत्यों को रोकने, जिसमें हत्या, गंभीर नुकसान और भौतिक विनाश की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों का निर्माण शामिल है, और मानवीय सहायता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। आईसीजे आदेश 28 मार्च 2024 बिगड़ती परिस्थितियों, जिसमें अकाल शामिल है, के कारण आईसीजे ने गाजा में बिना रुकावट के मानवीय सहायता की आवश्यकता को दोहराया। आईसीजे आदेश 24 मई 2024 इसराइल को राफा में अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने और ऐसी परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का आदेश दिया जो फलस्तीनी लोगों के भौतिक विनाश की ओर न ले, जिसमें बिना रुकावट के सहायता पहुंच पर जोर दिया गया। आईसीजे आदेश 24 मार्च 2025 से इसराइल की पूर्ण घेराबंदी, जो सभी सहायता को रोकती है और भुखमरी का कारण बनती है, इन आदेशों का सीधे उल्लंघन करती है। इसराइली अधिकारियों के बयान, जैसे कि वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोटरिच का अप्रैल 2025 का बयान कि गाजा में एक भी गेहूं का दाना नहीं जाएगा, मिडिल ईस्ट आई 2025 गैर अनुपालन को दर्शाते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के मामले को मजबूत करता है। नरसंहार संधि के तहत कानूनी दायित्व। 1948 की नरसंहार रोकथाम और दंड संधि राज्यों पर नरसंहार को रोकने और दंडित करने के लिए विशिष्ट दायित्व लागू करती है, जिसे राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 2 प्रमुख दायित्वों में शामिल हैं। 1 रोकथाम। अनुच्छेद I राज्यों को अपनी शक्ति के भीतर सभी उपाय करने चाहिए ताकि नरसंहार को रोका जा सके, जिसमें कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य कार्रवाइयां शामिल हैं जो चल रहे नरसंहारी कृत्यों को रोकने के लिए हैं। आईसीजे का 2007 का बोस्निया बनाम सर्बिया फैसला स्पष्ट करता है कि राज्यों को तब कार्य करना चाहिए जब उनके पास नरसंहार करने वाले अभिनेताओं पर प्रभाव हो, जैसे कि हथियारों की आपूर्ति या राजनीतिक समर्थन के माध्यम से। आईसीजे 2007 गाजा में इसराइल को सैन्य या आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले राज्य, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी, को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका समर्थन नरसंहार को सुगम न करे। कार्य न करने से इस दायित्व का उल्लंघन होने का जोखिम है। 2 दंड। अनुच्छेद 3 राज्यों को नरसंहार के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को अभियोजित करना चाहिए या उन्हें प्रत्यर्पित करना चाहिए, जिसमें सहभागिता भी शामिल है। अनुच्छेद 3 यह इसराइली अधिकारियों पर लागू होता है, जैसा कि नवंबर 2024 में भुखमरी के लिए युद्ध अपराध के रूप में आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट द्वारा प्रमाणित है। आईसीसी 2024-3 गैर सहभागिता। अनुच्छेद 3E राज्यों को नरसंहार में सहभागी नहीं होना चाहिए, जिसमें नरसंहारी कृत्यों को करने वाले अभिनेताओं को हथियार या समर्थन प्रदान करना शामिल है। इसराइल को हथियार प्रदान करने वाले देश सहभागिता के जोखिम में है यदि ये घेराबंदी को सुगम करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2025-4 न्याय क्षेत्र और सहयोग। अनुच्छेद VY राज्यों को संधि को लागू करने के लिए घरेलू कानून बनाना चाहिए और आईसीजे और आईसीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के साथ सहयोग करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का मामला, जो 30 से अधिक राज्यों द्वारा समर्थित है, इस सहयोग को दर्शाता है जो आईसीजे को इसराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए दबाव डालता है। आईसीजे प्रेस विज्ञप्ति 2025 संरक्षण की जिम्मेदारी R2P के तहत कानूनी दायित्व। 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित संरक्षण की जिम्मेदारी विश्व शिखर सम्मेलन परिणाम दस्तावेज परा 138-139, राज्यों को नरसंहार, युद्ध अपराधों, जातीय सफाई और मानवता के खिलाफ अपराधों से आबादी की रक्षा करने के लिए बाध्य करती है। आर2पी में तीन स्तंभ शामिल हैं। 1. स्तंभ आई, राज्य की जिम्मेदारी। प्रत्येक राज्य को अपनी आबादी को नरसंहार से बचाने की जिम्मेदारी है। गाजा में कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में इसराइल भुखमरी और मृत्यु का कारण बनने वाली घेराबंदी लागू करके इस दायित्व में विफल रहता है। ओह 2025। 2. स्तंभ 2, अंतर्राष्ट्रीय सहायता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कूटनीतिक, मानवीय और अन्य साधनों के माध्यम से राज्यों की सहायता करनी चाहिए। जॉर्डन और मिस्र जैसे राज्यों ने सहायता वितरण का प्रयास किया है, लेकिन इसराइल की नाकाबंदी इन प्रयासों को बाधित करती है। मिडल ईस्ट आई 2025। 3. स्तंभ 3, समय पर और निर्णायक प्रतिक्रिया। यदि कोई राज्य अपनी आबादी की रक्षा करने में विफल रहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई करनी चाहिए। आईसीजे आदेशों के साथ इसराइल का गैर अनुपालन इस दायित्व को ट्रिगर करता है। हालांकि अमेरिकी वीटो ने कार्रवाई को अवरुद्ध कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2024। नरसंहार के सबूत, एक्टस रॉयस और मेंस रिया। दक्षिण अफ्रीका का नरसंहार मामला तर्क देता है कि इसराइल के गाजा में कार्य, जिसमें 2025 की घेराबंदी शामिल है, नरसंहार का गठन करते हैं, जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और नरसंहार विद्वानों द्वारा पुष्टि की गई है। 1. एक्टस रॉयस, भौतिक कार्य। नरसंहार संधि अनुच्छेद 2 नरसंहार को हत्या, गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान और भौतिक विनाश की ओर ले जाने वाली जीवन की परिस्थितियों को लागू करने जैसे कृत्यों के रूप में परिभाषित करती है। इसराइल की घेराबंदी इन मानदंडों को पूरा करती है। हत्या और गंभीर नुकसान, भुखमरी से मृत्यु, कंकाल जैसे बच्चे और अस्पतालों का पतन हत्या और गंभीर नुकसान का गठन करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2025। जीवन की परिस्थितियां, नाकाबंदी भौतिक विनाश के लिए परिस्थितियां पैदा करती है, जिसमें गाजा की आधे से अधिक आबादी विनाशकारी भूख का सामना कर रही है। ओह 2025। 2. मेंस रिया, इरादा। संधि को पूर्ण या आंशिक रूप से समूह गाजा में फलस्तीनी को नष्ट करने की मंशा की आवश्यकता होती है। योआ कैलन 2023, बेजलिल स्मोट्रिच 2025 और मोशे सादा 2025 जैसे अधिकारियों के बयान गाजावासियों को भुखमरी करने की मंशा दर्शाते हैं, जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और द वॉशिंगटन पोस्ट 2025 द्वारा रिपोर्ट किया गया है। इसराइल का समर्थन करने वाले राजनीतिक नेताओं के लिए कानूनी जवाबदेही। वे राजनीतिक नेता जो चल रहे नरसंहार के मजबूत सबूतों के बावजूद इसराइल का समर्थन करते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानून के तहत नरसंहार और युद्ध अपराधों में सहायता और उकसाने के आरोपों का जोखिम उठाते हैं, क्योंकि उनके कार्य इसराइल के उल्लंघनों को सुगम या सक्षम कर सकते हैं। 1. अंतर्राष्ट्रीय कानून। नरसंहार संधि अनुच्छेद 3E नरसंहार में सहभागिता में हथियार, वित्त पोषण या कूटनीतिक कवर जैसे भौतिक समर्थन शामिल हैं जो नरसंहारी कृत्यों को सुगम करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के नेता जो इसराइल को हथियार और सैन्य सहायता प्रदान करते हैं, यदि उनका समर्थन घेराबंदी को सक्षम करता है तो उत्तरदायी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका नरसंहार के सबूतों के बावजूद प्रति वर्ष $3 बिलियन से अधिक सैन्य सहायता प्रदान करता है। सियारिस रिपोर्ट 2025, एमनेस्टी इंटरनेशनल 2025। रोम संनियम अनुच्छेद 25(3)(c) आईसीसी उन व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है जो युद्ध अपराधों, जिसमें भुखमरी शामिल है, में सहायता, उकसावे या सहायता करते हैं। हथियार प्रदान करना या संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों को अवरुद्ध करना ऐसी सहायता का गठन कर सकता है। मानवाधिकार समूहों ने इसराइल को हथियार देने में उनकी भूमिका के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के अधिकारियों की जांच के लिए बुलाया है, जिसमें भुखमरी और नरसंहार में सहभागिता का हवाला दिया गया है। द गार्जियन 2025। प्रथागत IHL, राज्य और व्यक्ति IHL उल्लंघनों में योगदान नहीं दे सकते। बिना शर्त समर्थन प्रदान करने वाले नेता सामूहिक दंड और भुखमरी जैसे युद्ध अपराधों को सुगम करने के लिए उत्तरदायी होने का जोखिम उठाते हैं। ICJ का 2007 का बोस्निया बनाम सर्बिया फैसला स्थापित करता है कि अपराधियों पर प्रभाव रखने वाले राज्यों को नरसंहार को रोकने के लिए कार्य करना चाहिए या जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए। ICJ 2007। सार्वभौमिक न्याय क्षेत्र, कुछ राज्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की अभियोजन की अनुमति देते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। नेता स्पेन या बेल्जियम जैसे देशों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं, जहां नरसंहार मामलों में सार्वभौमिक न्याय क्षेत्र लागू किया गया है। अल जजीरा 2025। 2. घरेलू कानून। अमेरिकी कानून विदेशी सहायता अधिनियम धारा 620 उन देशों को सैन्य सहायता, प्रदान करने पर रोक लगाता है जो मानवीय सहायता को प्रतिबंधित करते हैं। इसराइल के उल्लंघनों को अनदेखा करने वाले नेता, जैसा कि डॉन 2025 द्वारा दर्ज किया गया है, इस कानून का उल्लंघन करने के लिए घरेलू कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, विशेष रूप से सेनेटर बर्नी सैंडर्स जैसे सांसदों द्वारा सहायता निलंबित करने की मांग के मद्देनजर। सैंडर्स 2024 नरसंहार संधि कार्यान्वयन अधिनियम 18 U.S.C. सेक्शन 1091 अमेरिकी नागरिकों को नरसंहार में सहभागिता के लिए अभियोजित करने की अनुमति देता है। इसराइल को सहायता अधिकृत करने वाले अधिकारी निशाना बनाए जा सकते हैं, विशेष रूप से यदि अदालतें पाती हैं कि ऐसा समर्थन नरसंहारी कृत्यों को सुगम करता है। डॉन 2025 गैर सरकारी संगठनों ने अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं, जिसमें इसराइल को हथियारों की बिक्री जारी रखने से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें संघीय अदालतों में मामले लंबित हैं। रॉयटर्स 2025 ब्रिटिश कानून अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अधिनियम 2001 ब्रिटिश नागरिकों को युद्ध अपराधों या नरसंहार में सहायता के लिए अभियोजित करने में सक्षम बनाता है। नरसंहार के सबूतों के बावजूद इसराइल को हथियारों का निर्यात ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ कानूनी चुनौतियों को प्रेरित करता है, जिसमें कार्यकर्ता लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अल जजीरा 2025 ब्रिटेन का मंत्रिस्तरीय कोड अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की आवश्यकता रखता है, और सहभागिता को संबोधित करने में विफलता घरेलू जवाबदेही को जन्म दे सकती है, जैसा कि हथियारों की बिक्री में सार्वजनिक जांच में देखा गया है। द गार्जियन 2025 जर्मन कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ अपराधों का कोड VSTGB नरसंहार और युद्ध अपराधों में सहभागिता को अपराधी बनाता है। ICJ आदेशों के बावजूद इसराइल को हथियारों का निर्यात जर्मन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमों को जन्म देता है, जिसमें अदालतें यह समीक्षा करती हैं कि क्या निर्यात अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन करता है। DW 2025 जर्मनी की मानवाधिकारों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता, जो इसके हॉलोकॉस्ट के बाद के कानूनी ढांचे में निहित है, नेताओं पर सहभागिता से बचने का दबाव बढ़ाती है। जर्मन संघीय विदेश कार्यालय 2025 अन्य न्याय क्षेत्र कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देश जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में सहभागिता को अपराधी बनाने वाले घरेलू कानून हैं, इसराइल का समर्थन करने वाले नेताओं की जांच के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कनाडा का मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध अधिनियम हथियार निर्यात में शामिल अधिकारियों की अभियोजन की अनुमति देता है। रॉयटर्स 2025 फ्रांस का दंड संहिता नरसंहार में सहभागिता के लिए प्रावधान शामिल करता है, और गैर सरकारी संगठनों ने इसराइल को हथियारों की बिक्री के लिए अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं। ले मोंड 2025 3 केस स्टडी और मिसालें दारफुर 2009 ICC ने सूडानी अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए, जिसमें नरसंहार में सहभागिता भी शामिल थी, जो भौतिक समर्थन के माध्यम से अत्याचारों को सक्षम करने वाले नेताओं के अभियोजन के लिए एक मिसाल स्थापित करती है। ICC 2009 स्रेब्रेनिका 1995 पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ICTY ने लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करके नरसंहार में सहायता और उकसावे के लिए व्यक्तियों को दोषी ठहराया जो अप्रत्यक्ष योगदानों के लिए दायित्व स्थापित करता है। इक्टी अभियोजक बनाम क्रस्टिक 2001 म्यांमार 2017 संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों ने रोहिंग्या नरसंहार के दौरान म्यांमार को हथियार प्रदान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं की जांच के लिए बुलाया, जो राज्यों और नेताओं के लिए सहभागिता का जोखिम उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 2018 ये मिसालें सुझाती हैं कि हथियार वित्त पोषण या कूटनीतिक कवर के माध्यम से इसराइल का समर्थन करने वाले नेता समान जांच का सामना कर सकते हैं, विशेष रूप से जैसे जैसे नरसंहार के सबूत बढ़ते हैं। व्यावहारिक निहितार्थ ICC अभियोजन नवंबर 2024 में इसराइली अधिकारियों के लिए ICC के गिरफ्तारी वारंट युद्ध अपराध के रूप में भुखमरी के लिए एक सक्रिय जांच को दर्शाते हैं, जो समर्थन प्रदान करने वाले विदेशी नेताओं को शामिल करने के लिए विस्तार कर सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे गैर सरकारी संगठनों ने ICC को अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के अधिकारियों की सहभागिता के लिए जांच करने का आग्रह किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2025 घरेलू मुकदमे नेता बढ़ते घरेलू कानूनी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में मुकदमे नरसंहार और युद्ध अपराधों में सहभागिता को प्रतिबंधित करने वाले राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। रॉयटर्स 2025 DW 2025 प्रतिष्ठा और राजनीतिक परिणाम नेता सार्वजनिक प्रतिक्रिया और प्रतिष्ठा को नुकसान का जोखिम उठाते हैं, जैसा कि इसराइल की कार्रवाइयों का समर्थन करने वाले अधिकारियों को निशाना बनाने वाली प्रदर्शनों और अभियानों में देखा गया है। अल जजीरा 2025 प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध, सहभागिता में शामिल नेताओं को प्रतिबंधों या यात्रा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि सूडानी और सीरियाई अधिकारियों से संबंधित मामलों में देखा गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2011-5। दायित्व को ट्रिगर करने वाले सबूत, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, इसराइल की घेराबंदी को नरसंहारी के रूप में विस्तृत दस्तावेजीकरण, जिसने इसे सक्षम करने वाले राज्यों के लिए जवाबदेही की मांग की गई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल 2025। नरसंहार विद्वानों का सर्वेक्षण 2024 का सर्वेक्षण जो इसराइल की कार्रवाइयों को नरसंहार के रूप में पुष्टि करता है, समर्थन करने वाले राज्यों पर दबाव बढ़ाता है, नरसंहार विद्वानों का सर्वेक्षण 2024। आईसीजे आदेश 2024 के आदेशों के साथ इसराइल का गैर अनुपालन नरसंहार को रोकने में विफल रहने के लिए समर्थन करने वाले राज्यों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, आईसीजे आदेश 2024। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की गाजा में विकसित हो रहे नरसंहार की चेतावनियां उन राज्यों को फंसाती हैं जो समर्थन प्रदान करना जारी रखते हैं, ओच 2025। नरसंहार को अपराधों का अपराध के रूप में, नरसंहार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों का अपराध है जो मानव इतिहास पर एक अमिट दाग है क्योंकि इसका इरादा पूरे समूहों को मिटाने का है। 1944 में रफाइल लिंकिन द्वारा गढ़ा गया और 1948 की नरसंहार संधि में संहिताबद्ध, इसका उद्देश्य हॉलोकॉस्ट जैसे अत्याचारों को रोकना है। नरसंहार संधि आटूपी और अमेरिकी विदेशी सहायता अधिनियम जैसे घरेलू कानून नरसंहार को रोकने और दंडित करने की कानूनी और नैतिक अनिवार्यता लागू करते हैं जिसमें राज्य और नेता निष्क्रियता या सहभागिता के लिए जवाबदेह होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के आईसीजे मामले के लिए समर्थन, दक्षिण अफ्रीका का मामला जो 30 से अधिक राज्यों द्वारा समर्थित है, आईसीजे आदेशों के साथ इसराइल की गैर अनुपालन, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, मानवीय सबूतों और आईसीसी कार्रवाइयों से मजबूत होता है। इसराइल का समर्थन करने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ आरोपों का जोखिम इस संकट को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। निष्कर्ष, मार्च 2025 से गाजा पर इसराइल की पूर्ण घेराबंदी नरसंहार का गठन करती है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, यहूदी कानून और आईसीजे उपायों का उल्लंघन करती है। नरसंहार संधि और आटूपी राज्यों पर नरसंहार को रोकने और दंडित करने के लिए सख्त दायित्व लागू करते हैं जिनका उल्लंघन इसराइल और इसके समर्थक जोखिम में डालते हैं। वे राजनीतिक नेता जो हथियार, वित्त पोषण या कूटनीतिक कवर के माध्यम से इसराइल का समर्थन करते रहते हैं, नरसंहार के मजबूत सबूतों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानून के तहत नरसंहार और युद्ध अपराधों में सहायता और उकसाने के आरोपों का सामना कर सकते हैं जिसमें अमेरिकी विदेशी सहायता अधिनियम, ब्रिटेन का आईसीसी अधिनियम और जर्मनी का वीएसटीजी भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन अत्याचारों को रोकने और न्याय को बनाए रखने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस संकट में इसराइल के साथ खड़े लोग अदालत में जवाबदेही का सामना करें। प्रमुख उद्धरण, यूएनआरडब्ल्यू स्थिति रिपोर्ट नंबर 172, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसराइल की घेराबंदी, उज विकसित हो रहा नरसंहार, आईसीजे आदेश 2024, स्मोटरिच बयान, डॉन धारा 620 सैंडर्स, विदेशी सहायता अधिनियम, आईसीसी गिरफ्तारी वारंट, बोस्निया बनाम सर्बिया 2005 विश्व शिखर सम्मेलन परिणाम, ह्यूमन राइट्स वॉच, गाजा में आईएचएल।